समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, शाम के 4:30 का समय और समाचार पत्रिका कार्यक्रम परिक्रमा के आज के संस्करण में आपके स्वागत के साथ हम उपस्थित हैं। आज के इस सफर में आपके साथ हूं मैं, आप ही का अपना रवि कपूर, और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। नमस्कार अभिषेक।
हेलो रवि, हाउ आर यू।
आधे घंटे के इस कार्यक्रम में जानेंगे देश दुनिया के समाचार, चलेंगे क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है उनके पास खास। उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी बात करेंगे जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए या जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को कहा अलविदा।
यस, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट रवि कपूर। And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes, and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों से विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता छोड़कर वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सशस्त्र बलों की ही नहीं बल्कि हर भारतीय की जिम्मेदारी है।
Prime Minister inaugurates and lays foundation stone of several development projects worth more than 5,500 crore rupees in Gandhinagar, Gujarat.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम के क्रियान्वयन मॉडल को मंजूरी दी।
Met Department forecast heavy to extremely heavy rainfall over west coast of India along Kerala, Karnataka and coastal areas of Maharashtra.
और दक्षिण कोरिया के गोमी में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गुलवीर सिंह ने दौड़ में स्वर्ण और सर्विन सेबेस्टियन ने रेस वॉक में कांस्य पदक जीता।
And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Operation Sindoor Samman Yatra. Well, today's broadcast is something truly special, a story of pride, unity and vibrant patriotism. Operation Sindoor Samman Yatra, a march significant to India's unity. And just hours ago, the streets of Gandhinagar came alive in a sea of saffron, white and green as Prime Minister Narendra Modi flagged off the Operation Sindoor Samman Yatra from the iconic Raj Bhavan. PM Modi, accompanied by Gujarat CM Bhupendra Patel and Union Minister C.R. Patil, waved to the enthusiastic crowd. In these moments of unity, the crowd responded with flowers, songs and heartfelt emotion.
Abhishek, do you know what Operation Sindoor Samman Yatra is?
Yes, please tell our listeners.
प्रतीकात्मक रूप से ये पवित्र सिंदूर का सम्मान है, लाल निशान जो गर्व के साथ लगाया जाता है, जो भक्ति एकता का प्रतिनिधित्व करता है। और अभिषेक, ये यात्रा सिर्फ एक जुलूस नहीं है, ये सामूहिक राष्ट्रीय गौरव की भावना है जिसे सलाम है। ऐसे समय में जब एकता सबसे ज्यादा मायने रखती है, ये पहल विरासत, बलिदान और सेवा के प्रति हमारे जुड़ाव को फिर से जगाती है।
आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है, जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में साथियों उनको ध्वस्त कर दिया, और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे।
ये यात्रा सिर्फ राजभवन से महात्मा मंदिर तक की यात्रा नहीं है अभिषेक, ये भारत की आत्मा की यात्रा है। आप जो भी फूल अर्पित करते हैं, जो भी नारा लगाते हैं, वो हमारी एकता के ताने बाने को मजबूत करता है।
यस, एंड द चॉइस ऑफ स्टार्टिंग एट राजभवन एंड एंडिंग एट महात्मा मंदिर इज सिम्बॉलिक। इट्स अ ट्रिब्यूट टू अ पॉलिटिकल लेगेसी एंड स्पिरिचुअल फाउंडेशन। द सिंदूर सम्मान लिंक्स ट्रेडिशन विद द नेशन सोल, वेरी मच सो। It reminds people that patriotism isn't passive, it is participatory. Unity through culture is India's oldest strength.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आजादी के 100 साल पूरे होने पर विकसित भारत के सपने को साकार करने में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और हर नागरिक को इस सपने को साकार करने में अपनी भूमिका निभानी होगी।
हम गांव गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं, छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है, आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे।
Yes, and Ravi, I'm sure we all remember how the Indian Armed Forces, in a bold and coordinated move, had struck deep into enemy territory, not in provocation, but in retaliation and for seeking justice. And several terrorist sites across Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir were hit. And this operation came days after the barbaric attack in Pahalgam, where 25 of our citizens and one of Nepali citizen were murdered by cowards hiding behind ideology and guns.
बिल्कुल अभिषेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की है और कहा है कि उनकी वीरता ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान को भारत में हर आतंकवादी हमले की कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कभी भी भारत के खिलाफ सीधा युद्ध नहीं जीत सकता, इसीलिए उसने भारत के खिलाफ लड़ने के लिए आतंकवाद को हथियार बना लिया है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि हमारे पूरे देश की भावना में देशभक्ति कैसे दिखाई देती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया संदेश स्पष्ट था कि भारत मजबूती से खड़ा है, इसलिए नहीं कि हम युद्ध चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि हम सम्मान के साथ शांति की मांग करते हैं, क्योंकि जब आतंक हमारे दिल पर हमला करता है तो हम सिर्फ शोक नहीं मनाते, हम कार्रवाई करते हैं।
मैं जहां जहां गया ऐसा लग रहा है देशभक्ति का ज्वार गर्जना करता सिंदूरिया सागर और लहराता तिरंगा, जन मन के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम, एक ऐसा नजारा था, एक ऐसा दृश्य था। और ये सिर्फ गुजरात में नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में है।
और अभिषेक, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात पधारे। श्री मोदी के सम्मान में आज गुजरात के गांधीनगर में सिंदूर सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा के दौरान पूरा गांधीनगर देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ देखा गया। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुजरात पधारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। उनके सम्मान में आज गुजरात के गांधीनगर में आयोजित सिंदूर सम्मान यात्रा में लोगों की भारी भीड़ दिखी गई। यात्रा में शामिल हुई महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करके उनका स्वागत किया। स्वर्णिम पार्क से महात्मा मंदिर तक आयोजित प्रधानमंत्री के एक रोड शो में अपार नारी शक्ति, देशभक्ति के गीत, रास्ते पर तिरंगे, विभिन्न झांकियां, सांस्कृतिक कार्य और भारतीय सेना के हथियारों की प्रतिकृतियां भी शामिल थी, जिससे माहौल ऊर्जावान हो गया और यह यात्रा एक भव्य उत्सव बन गई। प्रधानमंत्री जी की एक झलक देखने के लिए भी लोगों में उत्साह देखने को मिला। जैसे ही प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हुआ, पारंपरिक परिधान, लाल साड़ी और सिंदूर लगाए हजारों महिलाओं ने हाथों में तिरंगा थामकर प्रधानमंत्री मोदी पर पुष्प वर्षा की और माँ भारती के जयकारों के साथ उनका स्वागत किया। इस रोड शो में भारतीय सेना के जवानों के साथ तेजस और रफाल फाइटर प्लेन, ब्रह्मोस मिसाइल की प्रतिकृति आकर्षण का केंद्र बन गया। परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से मैं प्रवेश अड़ियचा।
Yes, and as the Operation Sindur Samman Yatra culminated at Mahatma Mandir, the message is clear: when we walk together, no path is too long. Let's carry the spirit of unity beyond this yatra into our homes, workplaces and hearts. Jai Hind.
अभिषेक, अब समय हो गया है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। तो विश्व में नेपाली भाषा व साहित्य के विकास में पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र दार्जिलिंग पहाड़ के लेखक, साहित्यकार और साहित्यिक संघ संस्थाओं का बहुत ही बड़ा योगदान है। ऐसा ही एक संस्थान नेपाली साहित्य सम्मेलन है, जिसकी स्थापना अंग्रेजी शासनकाल के समय 25 मई 1924 में दार्जिलिंग में की गई। उस समय के प्रमुख साहित्यकार सूर्य विक्रम ग्यावाली, धरणीधर कोइराला और पारसमणि प्रधान ने मिलकर बढ़ते अंग्रेजी के प्रभाव से नेपाली भाषा को बचाने के लिए इस संस्थान की स्थापना की थी। उन दिनों नेपाली भाषा के पत्र पत्रिका के संपादन के साथ साथ पाठ्य पुस्तकों का भी लेखन और संपादन का काम इस संस्थान ने किया, जो आज भी जारी है। विगत 24 और 25 मई 2025 को इसने अपनी शताब्दी वर्ष समारोह मनाया, जिसमें देश के विभिन्न भाग व नेपाल के वरिष्ठ साहित्यकार उपस्थित थे।
विश्व में नेपाली भाषा को समृद्ध व लोकप्रिय बनाने में दार्जिलिंग के नेपाली साहित्य सम्मेलन का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में नेपाली भाषा को मान्यता दिलाने में इस संस्था ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। 25 मई 1924 में स्थापित इस संस्थान ने भारत व नेपाल के नेपाली भाषियों में नेपाली भाषा व साहित्य के विकास में अतुलनीय योगदान किया है। गत 24 व 25 मई को दार्जिलिंग में इस संस्थान का भव्य शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन सम्मेलन के भवन तथा गोरखा रंग मंच में संपन्न हुआ। इस शताब्दी वर्ष समारोह में देश के विभिन्न प्रदेशों व पड़ोसी राज्यों, विशेषकर नेपाल से बड़ी संख्या में वरिष्ठ साहित्यकारों की उपस्थिति रही। स्थानीय सांसद राजू बिष्ट, गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन प्रमुख अनित थापा की उपस्थिति भी रही। नेपाल के वरिष्ठ साहित्यकारों के साथ साथ पूर्वोत्तर के भी वरिष्ठ साहित्यकारों ने अपने साहित्य व कविता प्रस्तुत करने का शुभ अवसर प्राप्त किया। नेपाली भाषा को एक परिष्कृत भाषा के रूप में स्थापित व लोकप्रिय बनाने में नेपाल के आदि कवि आचार्य भानुभक्त कृत नेपाली रामायण का ठीक वही स्थान है जो स्थान तुलसीदास कृत हिंदी रामायण का हिंदी को लोकप्रिय और सरल बनाने में है। नेपाल के बड़े साहित्यकार बालकृष्ण सम ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि नेपाल में भी नेपाली भाषा के विकास में इस सम्मेलन ने अतुलनीय योगदान दिया है। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी कर्शियांग।
Ladakh is set to launch the nationwide Viksit Krishi Sankalp Abhiyan from 29th of May, and this 15 days outreach campaign will conclude on June 12, 2025. Outreach campaign is conceptualized strategically for direct connection between farmers at the grassroots level of rural and border areas and scientists of agricultural and allied sectors. This awareness campaign of Union Territory Ladakh is scheduled at the onset of Kharif season. It has been launched from KVK Nyoma, and it is strategically important as it is designated as the highest KVK of the country, facilitating the farmers residing on the Indo-China border. A lay correspondent, Yang Chang Dolma, has filed this report.
Viksit Krishi Sankalp Abhiyan is scheduled to be organized by 4 Krishi Vigyan Kendras of Ladakh in collaboration with the line departments such as agriculture, horticulture, animal husbandry, sheep husbandry and fisheries department. These Krishi Vigyan Kendras are the part of the 731 KVKs of the country, which will visit every village to aware the farmers about major suitable Kharif season crops for Ladakh's agroclimatic conditions, new technologies to diversify the livelihood from sheep, pashmina, goats, animal husbandry and fisheries. During the campaign, farmers will also be sensitized about the government welfare schemes and policies that offer subsidy and financial assistance and crop insurance. KVK Nyuma is organizing this campaign in all the 23 vibrant villages on the Indo-China borders. Program coordinator of KVK, Dr. Punsok Tundup, said the Viksit Krishi Sanklab Abhiyan is a significant step in strengthening the research, agricultural extension and farmers' linkage. This outreach campaign is an educational come interaction program at the doorstep of the farmers initiated by the Indian Council of Agricultural Research in association with the Department of Agriculture and Farmers' Welfare. For Parikrama, this is Yangchan Dolma from Leh Ladakh.
और अभिषेक, हम सब जानते हैं कि अयोध्या में पिछले वर्ष 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। अब मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में एक बार फिर भव्य धार्मिक आयोजन की तैयारी चल रही है। आगामी 3 से 5 जून तक 3 दिवसीय समारोह होगा, जिसमें राम दरबार सहित अन्य नवनिर्मित देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस बार आयोजन का केंद्र राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगा, जिसमें भगवान राम के साथ माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां प्रमुख हैं। राम मंदिर परिसर में नवनिर्मित अन्य मंदिरों की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी इसी अवसर पर की जाएगी। इस दिव्य अनुष्ठान में 101 वैदिक आचार्य और 14 यजमान शामिल होंगे, जो शास्त्रों के अनुसार सभी धार्मिक कार्य को संपन्न कराएंगे। इस दौरान किसी भी वीआईपी मेहमान को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नीपेन्द्र मिश्र ने बताया कि 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मंदिर परिसर में चल रहे अन्य निर्माण कार्य अक्टूबर तक पूर्ण हो जाएंगे।
जो धार्मिक कार्यक्रम हैं वे सभी 3 तारीख से शुरू होंगे और 5 तारीख को समापन होगा। मुख्य मंदिर के जितने भी निर्माण कार्य हैं उसके साथ पूर्ण हो जाएंगे। यह अपने में एक बहुत ही प्रमुख बात है। एक तरीके से आप इसे ऐतिहासिक तिथि कहेंगे कि एक कार्य का समापन हो जाएगा। बाकी परिसर में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वो भी लगभग सितंबर अक्टूबर में पूर्ण होने की संभावना है।
अयोध्या के श्री राम मंदिर में निर्माण कार्य के साथ ही शहर के चारों तरफ विकास कार्य भी तेजी से कराए जा रहे हैं। अयोध्या के सौंदर्यीकरण के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण विभिन्न चौराहों पर प्रभु श्री राम से जुड़े हुए स्तंभ लगवा रहा है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के वीसी अश्वनी पांडे ने बताया कि निर्माणों से यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है।
8 रोटरीज को हम लोग ने अभी टेकअप किया है। इसमें जमथरा, उदया, कनौसा तिराहा, भरतकुंड, एयरपोर्ट मार्ग आदि सम्मिलित हैं और इनका ब्यूटिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ वहाँ पे जो विभिन्न धार्मिक चिन्ह हैं उनका भी स्थापना, उनके स्कल्पचर की स्थापना की जा रही है, जिसमें चक्र है, तिलक है, कलश है आदि की स्थापना की जा रही है। ये कार्य अभी चल रहा है और जल्द ही इसको पूर्ण कर लिया जाएगा।
राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की भव्यता और दिव्यता में एक नया अध्याय होगा, जिसके बाद यहाँ आने वाले राम भक्तों को अब रामलला के साथ ही भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के राजा स्वरूप के भी दर्शन होंगे। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी लखनऊ से शैलेंद्र शर्मा।
और अभिषेक, अब अपने श्रोताओं को लिए चलते हैं खेल के मैदान में और जान लेते हैं वहां की हलचल।
In athletics, India's Gulbir Singh has clinched a gold medal in the men's 10,000-meter race at the Asian Athletics Championships in Gumi, South Korea. He secured the top spot, clocking 28 minutes, 38.63 seconds. Earlier, Servin Sebastian opened India's medals tally at the Asian Athletics Championships. Servin clinched the bronze medal in the men's 20-kilometer race walk, clocking 1 hour, 21 minutes, and 13.6 seconds today. Wang Zhaozhao of China won the gold medal, while Japan's Kanto Yoshikawa secured the silver. Another Indian athlete, Amit, finished fifth. And in some news from the Singapore Open in badminton, ace Indian shuttlers PV Sindhu and Aejas Pranoy have advanced to the single second round of the Singapore Open. In women's singles today, Sindhu defeated Wen Yu Zhang of Canada 21-14, 21-9 in the first round of the tournament in Singapore. However, Malvika Bansor suffered a first-round defeat as she lost to Thailand's Supanita Kethong 21-14, 18-21, 11-21. In the men's singles, Pranoy defeated Danish player Rasmus Gamke 19-21, 21-16, 21-14 in the first round. And in IPL T20 cricket, Lucknow Super Giants will take on Royal Challengers Bengaluru at the Ikana Cricket Stadium in Lucknow this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. And moving on to some business news, the benchmark domestic equity indices ended with losses of around 0.7%, weighed down by FMCG, IT and auto sectors and weak global cues in volatile trade today. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex dropped 625 points or 0.76% to close at 81,552. The National Stock Exchange Nifty 50 declined 175 points or 0.7% to settle at 24,826. In the global crude oil market, Brent crude was trading by almost 0.2% at $64.86 per barrel, and WTI crude was also trading over 0.1% up at $61.64 per barrel when reports last came in.
आइए श्रोताओं को अब जानकारी देते हैं उन महान व्यक्तित्वों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन.
We remember the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, who died on the 27th of May, 1964.
Jawaharlal Nehru was born in Allahabad on November the 14th, 1889.
Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of India upon independence in 1947 and continued to serve the nation till his death in 1964. We salute the great Indian.
We also remember nationalist Hukam Singh, who died on the 27th of May 1983. Hukam Singh took part in the anti-Simon Commission demonstrations in 1928 and was injured and arrested during a police baton charge on a procession in the streets of Montgomery.
Simon, go back!
Simon, go back!
Simon, go back!
Hukam Singh was born at Montgomery in Sahiwal district, presently in Pakistan. Singh was initiated into politics through the Shiromani Akali Dal and was its president for 3 years. He was also a member of the Montgomery Singh Sabha and its president for 3 years. Hukam Singh was arrested in 1924 and sentenced to about 2 years of imprisonment.
Partition forced Hukam Singh to cross over to India in August 1947. He became a refugee overnight. Disregarding his own safety, Singh actively took part in evacuating people from their houses and moving them to a safe place. However, his talents were soon recognized and he was appointed puni judge of the State High Court, Kapurthala, in December 1947. Hukam Singh was elected to the Constituent Assembly of India on 30th of April 1948. He actively participated in the Constituent Assembly's debates and only a year after his entry was nominated to the panel of its chairman.
Hukam Singh was also a member of the Provisional Parliament during 1950 to 1952. He served as a Speaker of the House in the Third Lok Sabha. The conventions and rules devised by him continue to guide the working of the Parliament even today. The noble soul breathed his last on the 27th of May 1983.
और अभिषेक पुण्यतिथियों में अब जानकारी देते हैं तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध विद्वान कंदुकुरी वीरेश लिंगम की, जिन्हें आधुनिक तेलुगु साहित्य में गद्य ब्रह्मा के नाम से ख्याति मिली. आपका जन्म हुआ 16 अप्रैल 1848 राजमंड्री आंध्र प्रदेश में और निधन हुआ 27 मई 1919 को. सनातन पंथी ब्राह्मण परिवार में जन्मे वीरेश लिंगम जाति पाति के कट्टर विरोधी थे. उन्होंने जात विरोधी आंदोलन का सूत्रपात किया. वीरेश लिंगम का जीवन लक्ष्य आदर्श नहीं बल्कि आचरण था, इसीलिए उन्होंने विधवा आश्रमों की स्थापना की. स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने 1874 में राजमंड्री के निकट धवलेश्वरम में और 1884 में इन्नीसपेटा में बालिकाओं के लिए पाठशालाओं की स्थापना की. आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य के प्रवर्तक वीरेश लिंगम ने प्रथम उपन्यासकार, प्रथम नाटककार और आधुनिक पत्रकारिता के प्रवर्तक के रूप में ख्याति अर्जित की थी. अभिषेक, जिस तरह हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रगतिशील चेतना के प्रतिनिधि थे, उसी तरह कंदुकुरी वीरेश लिंगम पंतुलु तेलुगु साहित्य के इतिहास में प्रगतिशील चेतना के प्रतिनिधि थे। कंदुकुरी वीरेश लिंगम द्वारा लिखित मुख्य रचनाओं में शामिल हैं मार्कंडेय शतकम, गोपाल शतकम, रसिक जन मनोरंजनम, शुद्रांध्र निर औष्ठ्य, निर्वचन नैषधम और शुद्रांध्र उत्तर रामायण आदि।
Gilbert Scott Heron passed away on this day in 2011. He was an American jazz poet, singer and musician, an author known for his work as a spoken word performer. In the 1970s and 80s, he referred to himself as a bluesologist, his own term for a scientist who is concerned with the origin of the blues. His poem, "The Revolution Will Not Be Televised," delivered over jazz soul beat, is considered a major influence on hip-hop music. And also, Henry Alfred Kissinger was born on this day in 1923. He was an American diplomat and political scientist who served as the 56th United States Secretary of State from 1973 to 1977 and the 7th National Security Advisor from 1969 to 1975, serving under Presidents Richard Nixon and Gerald Ford.
और अब जानकारी रमाबाई आम्बेडकर के बारे में, जो भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की पत्नी थी। आपका जन्म 7 फरवरी 1898 महाराष्ट्र में और निधन 27 मई 1935 को हुआ। उन्हें माता रमाबाई, माता रमाई और रमाताई के नाम से भी जाना जाता है। जब भीमराव आम्बेडकर 14 वर्ष के थे तभी रमाबाई का विवाह उनसे हो गया था। रमाबाई एक कर्तव्य परायण, स्वाभिमानी, गंभीर और बुद्धिजीवी महिला थीं, जिन्होंने आर्थिक कठिनाइयों का सामना सुनियोजित ढंग से किया और घर गृहस्थी को कुशलतापूर्वक चलाया। और जैसा कि हम सब जानते हैं अभिषेक, कि किसी भी सफल पुरुष की कामयाबी में एक महिला का हाथ होता है, तो ऐसा ही कुछ भीमराव अम्बेडकर साहब के साथ भी हुआ। भीमराव अम्बेडकर को विश्वविख्यात महापुरुष बनाने में उनकी पत्नी रमाबाई का ही साथ था। रमाबाई ने अतीव निर्धनता में भी बहुत ही संतोष और धैर्य से घर का निर्वाह किया और हर कठिनाई के समय डॉक्टर अम्बेडकर का साहस बढ़ाया, यानी कि उन्होंने हर कदम पर अपने पति भीमराव अम्बेडकर का साथ दिया और उनका साहस बढ़ाया। और भीमराव अम्बेडकर ने जो पुस्तक थॉट्स ऑफ पाकिस्तान लिखी, वो उन्होंने अपनी पत्नी रमो को भेंट की थी।
Ravi Shastri was born on this day in 1962. He's an Indian cricket commentator, former professional cricketer and head coach of the Indian national cricket team. As a player, he played for the Indian national cricket team between 1981 and 1992 in both test matches and one-day internationals. Although he started his career as a left-arm spin bowler, he later transformed into a batting all-rounder. Shastri was a member of the Indian team that won the 1983 Cricket World Cup. He won the C.K. Naidu Lifetime Achievement Award at the Indian Cricket Team Annual Award Show, Naman, in 2024.
और अब जानकारी भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों में से एक हवलदार हंगपन दादा के बारे में, जिनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1979 अरुणाचल प्रदेश, लेकिन शहादत हुई 27 मई 2016 जम्मू कश्मीर में। हंगपन दादा ने आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए शहादत प्राप्त की। वे 27 मई 2016 को उत्तरी कश्मीर के शमसाबाड़ी में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए। वीर गति प्राप्त करने से पहले उन्होंने 4 हथियारबंद आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। इस शौर्य के लिए भारत के 68वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश के लिए शहीद हुए हवलदार हंगपन दादा को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया।
Jamie Trevor Oliver was born on this day in 1975. He's an English celebrity chef, restaurateur and cookbook author. He is known for his casual approach to cuisine, which has led him to front numerous television shows and open many restaurants. Oliver reached the public eye when his BBC Two series, The Naked Chef, premiered in 1999. In 2005, he started the campaign Feed Me Better to introduce school children to healthier foods. Oliver is the second best-selling British author behind J.K. Rowling. His TED Talk won him the 2010 TED Prize. In June 2003, Oliver was made a member of the Order of the British Empire for services to the hospitality industry.
जयंतियों में बात करते हैं अब ओट पलाक्कल नीलकंठन वेलुकुरूप के बारे में, जिनका जन्म हुआ 27 मई 1931 और निधन 13 फरवरी 2016 को। वे प्रसिद्ध मलयाली कवि और गीतकार थे। साहित्य में बहुमूल्य योगदान के लिए वर्ष 2007 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गीतकार के रूप में ओ एन वी कुरूप 13 बार केरल राज्य फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। उनके द्वारा लिखी गई मुख्य रचनाओं में शामिल हैं मरुभूमि, अक्षरम, मृगया, अपहानम, उज्जयनी, स्वरम आदि आदि।
K.V. Vijendra Prasad was born on this day in 1942. He's an Indian screenwriter and film director who predominantly works in Telugu cinema. With a career spanning across nearly three decades, his filmography consists of over 25 films as a screenwriter. He is considered to be one of the most successful film writers in India and the only screenwriter who has had a hand in several of the biggest films of Indian cinema.
तो अब श्रोताओं से समय जो हो गया है उनसे इजाजत लेने का हो गया है तो अनुमति दीजिए रवि कपूर और अभिषेक को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की
नमस्कार, नमस्कार।